ఓం శాంతి. 1799 ఫ్రాన్స్ మే ఏక్ బహుత్ బడీ క్రాంతి హో గయీ. సదియో సే జో ఫ్రాన్స్ గులాం థా క్రాంతికారియో నే दास्ता की बेड़ियों से अपनी मातृभूमि को मुक्त किया. एक कारागार था जो कि अब भी है वहां, द प्रिजन ऑफ बैस्टील. वो एक ऐसा प्रिजन कारागार था जहां पर लोगों को बंदी बनाकर रखा था. कोई वहां 10 साल से बंदी था तो कोई 20, कोई 30, कोई 40. उनके हाथों में बेड़िया थी और पैरों में भी बेड़िया थी, और अंधेरी कोठरी में वो बंद थे जहां पर सूर्य की एक किरण भी मुश्किल से कभी आती थी. ऐसे वो प्रिजनर्स बंद थे उस बैस्टाइल के प्रिजन में. और जब फ्रांस में क्रांति हुई और क्रांतिकारियों ने क्रांति की ऐसी ज्वाला जलाई कि फ्रांस मुक्त हुआ, वो सारे क्रांतिकारी आ गए और बैस्टाइल का वो जो प्रिजन था उसमें घुस गए, और जितने कैदी वहां पर बंद थे उनको कहा, आज से तुम सब आजाद हो. सबकी बेड़ियां तोड़ी गई, क्योंकि जब उनको बंदी बनाया गया था और चाबी लगाई गई थी, चाबियां कुएं में फेंक दी गई थी, क्योंकि बंदी ऐसा बनाया था कि जीवन भर के लिए. और ऐसे ही सारे बंदी पड़े हुए थे कितने कितने सालों से, आशा की कोई किरण नहीं. तो और क्रांतिकारी घुस गए और अपने साथियों को उन्होंने मुक्त किया. सबकी बेड़ियां तोड़ी, हथकड़ियां तोड़ी, और सबको प्रकाश में लाया और सबसे कहा कि आज से तुम स्वतंत्र हो. वो सारे कैदी इतने सालों से अंधकार में थे, इतने सालों से उनको बेड़ियों की ऐसी आदत पड़ गई थी, जब बाहर आए बेचैनी होने लगी, क्योंकि अंधेरे को देखने की आदत थी, बेड़ियों के साथ सोने की आदत थी, और शाम तक लगभग सारे के सारे कैदी वापस आ गए और कहने लगे, हमें अपनी कोठरी पे वापस भेजो, हमारी बेड़ियां वापस लगा दो. क्योंकि इतने सालों से हमें बेड़ियों के साथ रहने का अभ्यास हो गया है, इतने सालों से अंधेरे का हमें अभ्यास हो गया है, हम सूरज को अब देख नहीं सकते, प्रकाश भयभीत करता है. हमें वापस अपनी अपनी काल कोठरी में जाने दो. ये कैसा अद्भुत सा परिणाम हो गया. क्रांतिकारियों ने सोचा था कि हमने तो मुक्त कर दिया सबको, पर वो सारे जो मुक्त हुए थे बाहर निकले और दुखी हो गए, क्योंकि अब उनका परिवार है ही नहीं. क्योंकि जब वो कारागार में गए थे उसके बाद उनका परिवार बिखर चुका था. अब वो कहने लगे, हम क्या खाएं और क्या पहने, अब कहां से कमाई करें, हमें तो उसी जीवन की आदत पड़ गई है. और वो कहने लगे, वापस बेड़िया लगा दो, वापस हमको काल कोठरी में फेंक दो. ये कैसी अद्भुत घटना है, और ये हुआ है. लंबा समय कोई बेड़ियों में रहता है, लंबा समय जो कारागार में रहता है, लंबा समय अगर कोई पिंजड़े में रहता है तो उसी पिंजड़े की आदत हो जाती है, लंबा समय जो अंधकार में रहता है तो उसी घटाटोप अंधकार की आदत पड़ जाती है, और वो छूटना नहीं चाहता, वही रहता है. वहीं उसको सुख सुविधा का अनुभव होता है। वो कैदी कहने लगे, यहाँ हमको दो बार भोजन मिल जाता है, अभी हम बाहर निकल के भोजन कैसे खाएं, कैसे कमाई करें, हमें तो कमाई करने की आदत ही छूट गई है। कैसी अद्भुत घटना ये इतिहास में हो गई। मनुष्य का मन बेड़ियों को स्वीकार कर लेता है, ये भूल ही जाता है कि मुझे मुक्त भी होना है, ये भूल ही जाता है कि मुक्ति का भी कोई मार्ग है, ये भूल ही जाता है कि इस अंधेरे से बाहर भी कोई प्रकाश की दुनिया है। उसे लगता है यही प्रकाश सत्य है। क्या हमारी दशा भी ऐसी नहीं, किसी विकार का अंधकार, किसी संबंध का अंधकार, जो हमें पता है, ज्ञान कहता है कि यह संबंध बंधन है, बाधा है, छोड़ दो इसको, पर मन नहीं मानता, निभाए चला जाता है और दुखी होते चला जाता है। जैसे कोई घोड़ा झाड़ियों के बीच जाता है और झाड़ियों की पत्ती खाता है, एक एक पत्ते को खाता है, खून निकल रहा है परंतु पत्ता खाना नहीं छोड़ता। कटीली झाड़ियां है परंतु खाते जाता है, खाते जाता है, दुखी होते जाता है और खाते जाता है। यही मनुष्य के मन की स्थिति है। और भगवान मुक्तिदाता है, वो तारणहार है, वो अब आया है, परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम, मुक्त करने आया है आत्मा को अपनी समस्त बेड़ियों से, समस्त बंधनों से, सभी पिंजड़ों से मुक्त करने आया है, ताकि आत्मा उन मुक्त गगन में घूमे, फिरे, वापस घर जाए। पंछी बंधन में है, उसे भी पता है कि वो बंधन में है, परंतु फिर भी छूटना नहीं चाहता है, क्योंकि पिंजड़े की ऐसी आदत पड़ गई, समय समय पर भोजन मिल जाता है, यहां वहां घूमने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पिंजड़ा अच्छा लगता है। परंतु पिंजड़े में रहना अच्छा है या आकाश में घूमना अच्छा है, क्या अच्छा है? क्या कहेंगे? आकाश में घूमना तो भगवान आए हैं हमें छुड़ाने। दो प्रकार की जीवन मुक्ति है, एक है सतयुग की जीवन मुक्ति और दूसरी है संगम युग की जीवन मुक्ति। यहां पर मुक्त होना, यात्स देही यात्स जन्मी, अभी वो मुक्ति तो दूसरी मुक्ति है, सतयुग की और मुक्तिधाम की, ये मुक्ति वर्तमान संगम युग की मुक्ति। स्वयं को मुक्त करना है अभी इसी वक्त। और मुक्ति के लिए कितना समय लगता है? बाबा कहते हैं 1 सेकंड। क्या ये अतिशयोक्ति है? क्योंकि बंधन और मोक्ष मुक्ति मन ही का है। वही मन जो मुक्त हुआ है, वही मन जो बंधन में बना है, वही मुक्त हो सकता है। ग्रंथियों को खोलना है, मन की जो सूक्ष्म गांठें हैं। चल उड़ जा रे पंछी, ये देश बेगाना हुआ है, वो देश पुकार रहा है, वो अव्यक्त आवाज पुकार रही है, अव्यक्त आरोहण का समय अब है। जैसे दिखाया है कि एक स्वतंत्रता सेनानी, एक्स फ्रीडम फाइटर, जिसने अपने देश के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी थी और अब देश स्वतंत्र हुआ था, पहाड़ियों पर घूम रहा था, और पहाड़ियों पर घूमते हुए उसे एक दर्दनाक पुकार सुनाई देती है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उन वादियों में आवाज़ घूम रही है जैसे कोई करहा रहा है, जैसे कोई पुकार रहा है, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। वो स्वतंत्रता सेनानी, एक्स फ्रीडम फाइटर, सोचता है कुछ भी हो मुझे ये जिसकी भी आवाज़ है उसे मुक्त करना है। और वो आवाज़ को ढूंढते ढूंढते, आवाज़ के पीछे जाते जाते एक सराय में पहुंचता है, एक होटल में, और वहां देखता है एक पिंजड़ा है जिसमें एक पंछी है और वो चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। उसे दया आती है परंतु वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो रेस्टोरेंट का जो मालिक है, सराय का जो मालिक है, उसका वो पंछी है, कैसे वो उसको छुड़ा ले। तो वो युक्ति रखता है कि आज रात यहीं रुक जाता हूँ, कमरा लेता है उस होटल में रेस्टोरेंट में और वहीं रुक जाता है। और रात में जब सब सो जाते हैं तो चुपचाप जाता है उस पंछी के पास, क्योंकि उसको पता था ये पंछी बहुत दुखी है इस पिंजरे में, उसे याद आती होगी होगी उस गगन की जहां वो घूमता था। और वो पिंजरे का दरवाजा खोलता है और हाथ अंदर डालता है और कहता है उड़ जा, पर वो पंछी नहीं मानता है, जबरदस्ती करता है निकालने की उस पंछी को, पंछी चोच मारता है, परंतु वो स्वतंत्रता सेनानी भी अपने ही जिद पर अड़ा था कि मैं इसे मुक्त करके ही रहूंगा, और हाथ डाल के उसको खींच के निकालता है और आकाश में उड़ा देता है और बहुत खुश हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है कि मैंने आज किसी एक जीव को, एक आत्मा को मुक्त कर दिया। सो जाता है, सुबह उठता है, फिर से आवाज आती है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसे आश्चर्य होता है, अब कौन चिल्ला रहा है, अब कौन पुकार रहा है, फिर से आवाज, फिर से वो दर्द भरी आवाज, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसे लगता है शायद वो पंछी किसी पहाड़ी पर बैठकर चिल्ला रहा है, पर वो देखता है और आश्चर्य लगता है, वो पंछी तो वापस उसी पिंजरे में आ गया है, वहीं पर बैठा है और वहीं से चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। क्योंकि अब पिंजड़े का जीवन ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब पिंजड़े को छोड़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि बंधनों से प्यार है, दुखों से ही प्यार है, चाहता है सुखी होना पर प्यार दुख से करता है, चाहता है मुक्त हो जाऊं, सब व्यर्थ है, जीवन ही व्यर्थ है, परंतु जीवेशना, जीवन से अति प्रेम है, छोड़ना नहीं चाहता। सूफी लिटरेचर में बताया है, एक लकड़हारा इतना दुखी है, इतना उदास है, लकड़ियों का बोझ लिए जंगल से जा रहा है और कोसता रहता है अपने भाग्य को, अपने जीवन को, कहता है अगर मृत्यु कहीं है, मौत कहीं है तो आ जाए, ऐसा भी कोई जीवन है इतना दुख भरा। और दिखाया है काल्पनिक कहानी, वो मौत उसकी बात सुन लेती है और आ जाती है वो छाया और उससे कहती है क्या तुमने मुझे याद किया, वो कहता था नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही, ये जरा लकड़ियां मेरे सिर पर रख दो बस। पुकारता तो है कि छोड़ो, पर छूटना चाहता है शायद नहीं। भगवान कह रहे हैं उड़ जा पंछी, बंधनों को छोड़ और उड़। स्वयं से पूछना है क्या मैं मुक्त होना चाहता हूं, समस्याओं से, उलझनों से, मुश्किलों से, हिसाब किताब से, कार्मिक अकाउंट से, एंग्जाइटी से, भय से, कड़वाहट से, विकारों से, व्यर्थ से, निगेटिव से। तो हमें मुक्त होना है, और एक पंछी यदि मुक्ति चाहता है तो जैसे सात रंग बताए वैसे यहां पर भी सात मार्ग है मुक्ति के, उड़ने के लिए। सात चीजों की आवश्यकता है। और उड़ने के लिए सबसे पहले चाहिए पंख। कौन से पंख से उड़ना है हमें? ज्ञान और योग के पंख से। और कौन से पंख से उड़ना है? जोर से, उमंग और उत्साह के पंख से उड़ना है। और किस पंख से उड़ना है? कौन से पंख से? कौन से पंख से? त्याग और तपस्या के पंख। पंख लगाना है। कई बार मुरलियों में आता है, आत्मा के पंख कट गए, उड़ नहीं सकती। ज्ञान और योग, पंख लगाने हैं। अर्थात ज्ञान को शक्तिशाली बनाना है और योग को भी शक्तिशाली बनाना है, ताकि उड़ सके, ऊंची उड़ान भर सके। दोनों में से एक भी पंख यदि कमजोर है तो आत्मा नहीं उड़ पाएगी। जन जन से अंधकार में रही है आत्मा, उसे ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान जैसी वस्तु संसार में और कोई नहीं, जो आत्मा को मुक्त करते, पवित्र करते। यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमारे हाथों से जो भी पाप, विकर्म, सूक्ष्म अवज्ञाएं हुई है, क्यों हुई है? अज्ञान के कारण। किसी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने पाप और पुण्य की परिभाषा दी है। पाप अर्थात विस्मृति, पुण्य अर्थात स्मृति। बस ये छोटी सी परिभाषा है। जब जब बाप की याद भूले, देह अभिमान आया और पाप हुए। जब जब बाप की याद में है, जो कुछ भी किया पुण्य ही हुआ। छोटी सी परिभाषा है। तो पंख लगाने हैं ज्ञान के। और जैसे सुबह बताया, चिंतन, मनन, एकांत, मौन, अध्ययन, चर्चा ज्ञान की। जो दूसरों ने चिंतन किया है उसका आधार लेना है, परंतु दूसरे के चिंतन को बैसाखी नहीं बना देना है। स्वयं स्वयं का चिंतन करना है। आधार ले सकते हैं, परंतु चिंतन अपना करना है। और वो एक दिन की बात नहीं, रोज करना है। दूसरा, योग। एक तो अमृत वेला और दूसरा नुमाशाम। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दो शक्तिशाली हो। चाहे कुछ भी हो जाए, अमृत वेला योग छूटना नहीं चाहिए। इस सभा में ऐसे कितने हैं कि जिनका पिछले एक मास में, माताएं और भाई बहने, एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ? बहुत सारे हैं। और जिनका हुआ है, वो ये याद रखे कि इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही अमृत वेला है। सारी समस्याओं का उत्तर अमृत वेला है। सारे प्रश्नों का उत्तर अमृत वेला है। हर समस्या का समाधान अमृत वेला है। सुबह सुबह उठ जाओ और भगवान से सारे उत्तर ले लो। और जैसे सुबह भी कहा था, शक्तिशाली अमृत वेला करने की विधि, जल्दी उठना नहीं है, जल्दी सोना है। सेवाएं बहुत है, विस्तार है, परंतु कुछ ऐसी युक्ति करनी है कि जिससे जल्दी सब कुछ समेट लिया जाए और जो करना है सुबह उठ के किया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक दूसरा होमवर्क दे रहे हैं आप सबको। अमृत वेला की एक किताब है यज्ञ में, अमृत वेला जिसका नाम है। जिसने वो नहीं पढ़ी है, वो अगले एक मास तक वो किताब पढ़ेंगे। और जिन्होंने पढ़ ली है वो उसको रिवाइज करेंगे। अमृत वेला हिंदी में किताब है, बाबा के महावाक्य है उसमें, अमृत वेले की संबंध में सारी बातें उसमें लिखी हुई है। रिवाइज करना है क्योंकि वही समय है जब बहुत अच्छा ज्ञान का चिंतन भी हो सकता है, योग भी हो सकता है, बाप से रूह रिहान भी हो सकती है, ड्रिल भी हो सकती है और सकाश भी दी जा सकती है, सारे कार्य किया जा सकता है। परंतु यदि हम लेट उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं और फिर अमृत वेला कर रहे हैं तो इतने सारे कार्य कैसे पूरे होंगे? पीछे पीछे जाना है थोड़ा थोड़ा, नींद का बैलेंस रखते हुए। इसलिए कहा जो लोग और जिनको सेवाएं नहीं है और जो सो सकते हैं जल्दी सो जाए, व्यर्थ में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सीरियल, इधर उधर बातें, सोशल मीडिया, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है सो जाओ, ताकि सुबह सुबह उठ जाओ 2:30-3 बजे और बाबा से शक्तियां ले लो। ज्ञान और योग ये 2 पंख है। जो भी अमृत वेला मिस कर रहे हैं अपने ही मन से बात करनी है। 2-3 दिन पहले मुरली में था, अपने आप से नफरत आनी चाहिए, ये विकार मुझ में अब तक है, आया था ना अभी कुछ दिनों पहले, 3 दिन पहले, अपने आप से नफरत आनी चाहिए, काम है, क्रोध है, भो भो करते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज है पंख। दूसरा, उड़ने के लिए कोई भी पिंजड़ा न हो। देह के संबंध का पिंजड़ा, देह के आकर्षण का पिंजड़ा, देह के धर्मों का पिंजड़ा, देह की भाषा का पिंजड़ा, ब्रह्मा बाबा जब से ज्ञान में आए अर्थात जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई उसके बाद बाबा ने कभी भी सिंधी भाषा का प्रयोग नहीं किया। जो बाप की भाषा वो हमारी भाषा, और बाप की भाषा कौन सी है? कौन सी है? हिंदी। और हम कौन सी बोलते रहते हैं दिन भर? भगवान को कौन सी भाषा पहुंचती है भगवान तक? अब ये दूसरा प्रश्न है। 5 बाबा के बच्चे बाबा को याद कर रहे हैं, एक इंग्लिश में याद कर रहा है, एक मराठी में याद कर रहा है, एक हिंदी में याद कर रहा है, एक गुजराती में, एक पंजाबी में। सबसे पहले नंबर पे कौन सी भाषा पहुंचेगी अब बताओ? एक हिंदी। और हिंदी वाला झूठा झूठा याद कर रहा हो तो? जो सच्चे दिल से भगवान के पास कोई भाषा नहीं पहुंचती है, प्रकंपन पहुंचते हैं, भाषा नहीं पहुंचती है, भावनाएं पहुंचती है। वैसे तो प्रेम ही सर्वोत्तम भाषा है, वो प्रेम का प्यासा है और भावना का भूखा है। परंतु भगवान की जो भाषा हो वो हमारी भाषा हो, ताकि उसके ज्ञान को हम समझ सके। स्पीकर यहां है, सुनने वाले यहां हैं, वो एक भाषा में बोल रहा है, हम दूसरी भाषा में समझ रहे हैं। कितना अच्छा हो कि उसकी और हमारी भाषा एक हो, ताकि हम उसी भाषा में समझ सके। और भाषा न जानना आलस्य की निशानी है। जबकि हम जान सकते हैं, पुरुषार्थ किया जा सकता है। हमने देखा है, यहां तो नहीं, साउथ में ऐसा बहुत है, एक ही मुरली 2-2 घंटा तक चलती है, पहले हिंदी और फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम में उसका ट्रांसलेशन, 1-1 घंटा तक चलती है। यह भी पुरुषार्थ करना, यह भी एक बंधन है भाषा का। तुम भी मराठी और हम भी मराठी, और तुम भी गुजराती और हम भी गुजराती, तुम भी कर्नाटक से और हम भी कर्नाटक से, ये भी बंधन है। मेरा सेवा केंद्र और मेरा परिवार, लास्ट संडे की मुरली, ऐसा सोचने वाले त्रेता में आएंगे। भाषा भी बंधन है, नहीं तो भाषा जितनी हो सके और जो जानते हैं अपनी भाषा को हिंदी कर दे, सेवा केंद्र पर भी, नहीं तो वो भी बंधन है। मधुबन में यदि कोई मिल जाए तो, कोई मराठी मिल जाए तो हम क्या कहते हैं, तुम भी मराठी और हम भी मराठी। हमने कभी ऐसा कहा कि तुम भी परमधाम से और हम भी परमधाम से, कहा किसी को? क्यों? अर्थात हम बंधन में हैं, अर्थात हम हदों में हैं। भाषा भी बंधन है, स्थान भी बंधन है। भारत और पाकिस्तान की मैच हो गई तो कौन जीतना चाहिए? हम हैं विश्व सेवाधारी, अब बताओ। हे विश्वची माझे घर, हदों से निकलकर बेहद में जाना है। भाषा का भी बंधन ना हो, देश का भी बंधन ना हो, देह के धर्म, देह के संबंध, ये सब पिंजड़े हैं जिसमें हमने अपने आप को बांध लिया है। उधर संसार में कोई सन्यास लेता है तब भी कहता है मैं जैन सन्यासी हूं। अब सन्यास ले लिया, अब जैन कहां से आ गया? मैं बौद्ध भिक्षु हूं, बौद्ध कहां से आ गया? यह भी तो बंधन है, सारे बंधन है। कुंभ मेला में साधु होते हैं, नागा साधु, सारे शरीर में राख लगा लेते हैं परंतु छोटा सा आईना फिर भी रखते हैं। शरीर में राख लगा ली, आईना किस लिए चाहिए अब? देखने के लिए कि ठीक से लगी कि नहीं, जटाएं ठीक है कि नहीं। साधु किस लिए बना? संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए। नए बंधन खड़े कर दिए वहां पर, बंधनों से मुक्त। ये पिंजड़े हैं सारे, देह, देह के संबंध, देह की भाषा, देह के धर्म, देह का आकर्षण, देह के भोग, देह की स्मृतियां, देह का स्थान, ये सभी बंधन है। अंतर से अभ्यास करना है और धीरे धीरे सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त करना है। कोई भी बंधन ना हो, बाबा ऐसी स्थिति चाहते हैं बेहद की। हम केवल भारत के सेवाधारी नहीं, हम विश्व सेवाधारी है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना, अर्थात हमारा संबंध किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा संबंध किसी परिवार से नहीं है, हमारा संबंध किसी समाज से नहीं है, हमारा संबंध किसी प्रांत से नहीं, किसी राज्य से नहीं, किसी देश से नहीं, विश्व से है। हम वैश्विक सेवाधारी है, सार्वभौम। इसलिए हदों से भी बाहर निकलना है, सभी हदों से। बाबा को ऐसी हदें पसंद नहीं है। सेवा केंद्र, घर, ये मेरा, ये तेरा, सभी बंधन है। तो सबसे पहली बात चाहिए पंख, दूसरी बात चाहिए उड़ने के लिए पिंजड़ों से मुक्त। ढूंढना है, लिस्ट बनानी है, मेरे जीवन के कौन से पिंजड़े हैं। क्या कोई व्यक्ति पिंजड़ा बनकर बैठा हुआ है? कोई आत्मा तो नहीं, पति तो नहीं, पत्नी तो नहीं, बच्चा तो नहीं, बच्ची तो नहीं, मां तो नहीं, बाप तो नहीं। कौन मां, कौन बाप, कौन भाई? आत्मा ने इतने जन्म लिए, हिसाब किताब के कारण सब बने हैं, पर मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, मुक्त हूं इन सब से, यह दूसरी बात। तीसरी बात, कोई भी बेड़िया पैर में नहीं चाहिए, किसी भी पिंजड़े में नहीं, और पंछी को यदि उड़ना है और उसके पैरों में बेड़िया है तो कैसे उड़ पाएगा वो? बेड़ियों से मुक्त होना है और बेड़िया है साधन, बेड़िया है संसार की सामग्री, संसार की वस्तुएं। सारा मोह निकल गया पर एक वस्तु में अभी भी आत्मा पकड़े हुए है। जैसे हमेशा उदाहरण हम देते हैं, एक साधु 40 साल से प्रवचन करता है, 40 साल पहले पत्नी को छोड़ दिया था, 40 साल पहले पत्नी को छोड़ दिया, सन्यास ले लिया। 40 साल के बाद एक दिन शिष्य खबर लाता है कि महाराज गुरुजी आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। गुरुजी कहते हैं अच्छा हो गया, झंझट छूटी। मतलब 40 साल तक भी वो क्या थी? झंझट थी। अभी तक मन में उसका चिंतन चालू था। साधना करनी है, परंतु साधन अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी ठीक, आज है और कल नहीं होंगे। बाबा ने कहा है तुम्हारा जितने तुम्हारे पास साधन है एक दिन सब ठप हो जाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। मोबाइल होगा परंतु नेटवर्क नहीं होगा, रेंज नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, एक डब्बा सा बन जाएगा बस, और कुछ भी नहीं। बेड़िया, सांसारिक वस्तुएं, पद पोजीशन, छोटे हैं उन्हें इंचार्ज बनने का शौक है, और इंचार्ज जो है आपसी मतभेद में है। कैसी विडंबना है विश्व भर में, चाहे अध्यात्म चाहे लौकिक, क्योंकि तृष्णाएं कभी पूर्ण होती नहीं। जो पाने की इच्छा है वो पाते ही वो व्यर्थ हो जाती है, फिर कुछ दूसरा चाहिए, वो दूसरा मिल जाए तो वो व्यर्थ हो जाता है, फिर तीसरा चाहिए। कोई एक अव्यक्त संदेश में बाबा ने कहा था, कहीं पर 50 सेंटर है पर सब में संघर्ष चालू है, और कहीं पर एक ही सेवा केंद्र है परंतु वहां पर सभी योगी है और सभी योग युक्त है, तो ऐसा सेंटर बाबा अधिक पसंद करेंगे जहां पर परस्पर संघर्ष हो रहे, ब्राह्मण ही लड़ रहे आपस में तो क्या कहेंगे। बेड़िया, इतना डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि उसके सिवा बेचैनी हो। जैसे हॉस्पिटल में एक युवक आया स्ट्रेचर पर और उसके साथ उसके दोस्त है, और कहने लगे सब लोग क्या हुआ क्या हुआ, डॉक्टर पूछता है तो दोस्त कहते हैं कुछ नहीं डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप का मरीज है, 4 दिन से इंटरनेट बंद है, इसलिए क्या हो गया, बेहोश, एडिक्शन हो गया, एडिक्शन। अभी अभी बैंगलोर निमहांस में बहुत बड़ा न्यूरोलॉजी का सेंटर है निमहांस, वहां पर एक पेशेंट को एडमिट किया गया, यंग गर्ल 25-26 साल की, उसको एक बीमारी हो गई टेक्स्टिंग की, मैसेज करने की बीमारी, उसके लिए एडमिट किया गया। दिन रात मैसेज करती है, एक एक दिन में 12-12 घंटे तक मैसेज करती रहती है, और वो एडिक्शन हो गया है, हाथ रुकते ही नहीं, बेचैनी होती है हाथ अगर रुक जाए तो, जैसे कोई दारू पीता है और दारू बंद करने को कहा तो बेचैनी होती है, वैसे उसका है, अभी उसका ट्रीटमेंट चालू है, इतना एडिक्शन। ये बेड़िया है, ये तीसरी बात। चौथा, यदि पंछी को उड़ना है तो डीप डिजायर चाहिए, गहरी इच्छा चाहिए। बिना गहरी इच्छा के कोई मुक्त नहीं हो सकता। हमारी इंटेंसिटी, तीव्रता क्या है? क्या वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं? उसके पहले हमें और 10 चीजें करनी है, बाद में मुक्त होना चाहेंगे? शायद नहीं उत्तर है। हम चाहते हैं ये बंधन थोड़ा और चले और चले और चले। वो जो बेड़िया होती है उनको काटना बहुत मुश्किल है लोहे की, पर जो सोने की है उसको कैसे काटे? इतनी सुंदर दिखती है और उस पे हीरे चढ़े हुए हैं, कैसे काटेंगे? लोहे की हो तो काट के तो फेंक दी, पर ज्ञान में आने के बाद जैसे कोई माता है, पति विरोध करता है ज्ञान का, सब कुछ छोड़ छाड़ के मधुबन आ गई और मधुबन में किसी से प्रेम हो गया, अब क्या कहे? वो तो छोड़ दिया तलवार से, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, एकदम नशा पवित्रता का, वो सब तोड़ ताड़ कर इधर आ गए और यहां पर फंस गए किसी व्यक्ति में, या तो भोजन में या तो और साधन में। इसको कैसे छोड़े? लोहे की जंजीरें तोड़ना बहुत आसान है, परंतु जहां हीरे सोने कैसे फेंकेंगे? इच्छा नहीं होती है छोड़ने की, क्योंकि दिखाई भी अच्छी लगता है, अच्छा लगता है। लोहे की जंजीरें छोड़ना आसान है, सोने की जंजीरें छोड़ना मुश्किल। विधि है जब वो सोना लोहा दिखाई देने लगे, जब वो बंधन विष दिखाई देने लगे, तभी छोड़ा जा सकता है, तब तक नहीं। तो गहरी इच्छा चाहिए। कौन सी इच्छा? ये जो बंधन है, ये जो दुख है, बार बार मैं एक ही कारण से दुखी होता हूं, एक ही व्यक्ति मुझे बार बार दुखी करता है, और मुझे दुखी करने का अधिकार भी मैंने उस खुद ही दिया है उसको, मैंने अपने रिमोट कंट्रोल उसके जेब में रखा है। हर बार कोई आता है मुझे दुखी करके चला जाता है, वही व्यक्ति बार बार आता है मुझे दुखी करता है। यह एकमात्र संस्था है संसार की जिसमें दो शिक्षाएं दी गई है। पहली, दुख नहीं दो, यह सबने सिखाया, पर दुख न लो यह केवल भगवान ने सिखाया। सेल्फ विक्टिमाइज, खुद ही को दुखी करना, दुखी हो जाना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ विक्टिमाइजेशन। किसी ने रात भर रंगोली निकाली, सुबह आकर कोई कह दे ये भी कोई रंगोली है, दुखी। फिर सोचा इसके बाद ये झंझट में ही नहीं पड़ेंगे, सेवा बंद, क्योंकि हमको ऐसा कहा, रात भर मेहनत की और भोजन बनाया, किसी ने आकर सुबह कह दिया ये भी कोई भोजन है, टेस्टलेस। दूसरों की बातों से हम कितना जल्दी प्रभावित हो जाते। 10 लोग खड़े हैं, हर एक हमारी तारीफ करता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, कोई ध्यान नहीं दिया। एक आके कहता है तुम बहुत खराब हो, बस झपट लिया, पकड़ लिया उसकी बात को, रात भर उस पर चिंतन मनन। इतना प्यार क्यों है दुख से? प्रेम है दुखी होने से, अच्छा लगता है दुखी होना। जब तक दुखी नहीं होते बेचैनी रहती है, सभी दुख सुखी दे, सब सुखी सुख दे रहे, अच्छा नहीं लगता है, कोई तो आकर कुछ कह दे। और जैसे कहा पकड़ लिया, रात भर चिंतन। किसी को कहो, माता को, यह ज्ञान की पॉइंट है, इस पर चिंतन करो, तो क्या कहती है? अग भाई। और किसी माता को दूसरी माता ने कुछ कह दिया तो रात भर चिंतन की अविरल धारा बहती है, सुबह तक रामायण लिखी जा सकती है एक, इतनी बड़ी चिंतन। तो अर्थात चिंतन की शक्ति है, परंतु दिशा गलत है। स्वयं को दुखी करना स्वभाव बन गया है, बात बात पर नाराज होना, रूठना, मूड ऑफ स्वभाव बन गया है। उदास होना स्वभाव बन गया है। दूसरे ने कुछ कहा, उदास। सेंसिटिव नेचर, फीलिंग देवी, आंसू यहां पर रखे हुए हैं, उधर से बटन दबा और इधर बहना चालू। पिछले एक मास में ऐसी कितनी माताएं जो एक बार भी नहीं रोई, हाथ खड़ा करो। बाकी सब सामने देखना, आगे पीछे नहीं देखो, नहीं तो उठाएंगे नहीं। बस इसका मतलब बाकी सब रोए। और भाई कितने हैं जो एक मास में एक भी बार नहीं रोए, बहुत है। और मन से दुखी होकर रोते रहते हैं। मेरा रोए चुपके चुपके, मेरे दर्द न जाने को है, ये भाइयों की स्थिति है, चुप चुप के रोते हैं। रोने का संबंध सुख और दुख से नहीं, अतिरेक से है, एक्सेस। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। सभी करेंगी माताएं, क्या करेगी? योग की धूप से। हमारे पास एक बहन है, वो कहती है हमारी आंसुओं की टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप बेअसर है, कोई काम नहीं करती, इतनी पावर है हमारी टंकी में आंसू। रोते रहना, दुखी होते रहना, उदास होते रहना, डिप्रेशन में रहना, खुद को दोषी मानना, सेल्फ विक्टिमाइज करना, हीनता के भाव लाना, अपराध भाव लाना, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो आत्मा अपराध भाव में है, गिल्ट कॉन्शियस में, वो कभी भी पुरुषार्थ नहीं कर सकती। ये भाव है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, स्वयं स्वयं को माफ करना पड़ेगा। जैसे एक रात चर्च के द्वार पर दस्तक होती है, वो पादरी, वो फादर द्वार खोलते हैं, एक व्यक्ति आता है, कहता है बाजू में एक हॉस्पिटल है, वहां पे एक पेशेंट मर रहा है, बस अब मरने को है, आप एक बार चल के देख लो, बस आप दृष्टि दे दो मरते मरते पेशेंट को। तो आधी रात हो गई है और मौसम भी ठीक नहीं है, आंधी तूफान है, फिर भी हॉस्पिटल से वो व्यक्ति आया है, कहता है बस अब जाने वाला है और बहुत रो भी रहा है और मरने को है, आप एक बार देख लो। तो फादर कहता है ठीक है। फादर पहुंचते हैं, उस पेशेंट के पास जाते हैं और पेशेंट इतनी गालियां देता है, निकल जाओ यहां से बिल्कुल, मेरे पास नहीं आना। फादर बाहर जाके खड़े रह जाते, क्योंकि बारिश हो रही है, सोचते थोड़ा देर रुक जाऊं। थोड़ी देर बाद फिर एक बार कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति अब मरने ही वाला है, फिर से गुस्सा करता है कि जाओ यहां से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। गुस्से में है बहुत और दर्द में भी है, पर इरिटेबल है, चिड़चिड़ापन है। फादर फिर बाहर जाते हैं, फिर रुकते हैं, सोचते हैं एक बार फिर ट्राई कर लूं, वैसे भी बारिश हो रही है। और अब वो व्यक्ति थोड़ा शांत है, बस अब अंतिम सांसें गिन रहा है और कहता है फादर मैं क्या करूं, मेरे जीवन में ऐसा एक पाप हो गया जो मैंने किसी को नहीं बताया आज तक। वो कहता है 30 साल पहले मेरा काम था रेलवे में, मैं गार्ड था, वो झंडी दिखाने वाला, और एक बार मैंने शराब पी ली और गलत झंडी दिखा दी और ट्रेन आ गई और एक कार जा रही थी, वो कार में जितने लोग थे वो सब मर गए, उसमें एक माँ थी, दो बच्चे थे और एक ड्राइवर, दो छोटे बच्चे थे और माँ थी, मेरे वजह से उन वो सब मर गए। मैंने कैसे तो ऐसे अपने आप को कानून से तो बचा लिया, परंतु ये अपराध भाव अब भी पीछा कर रहा है और अब मैं मरने को हूं। वो फादर पूछता है वो स्टेशन कौन सा था, वो बताता है। वो फादर पूछता है वो तारीख कौन सी थी, वो बताता है। और फादर उससे कहता है मेरे दोस्त, उस कार में जो महिला थी और दो बच्चे थे, उसके अलावा एक तीसरा बच्चा भी था, वो दो नहीं थे, तीन भाई थे और तीसरा मैं हूं। और अपने दो भाई और मां की तरफ से मैं तुम्हें माफ करता हूं। तब वो अपराध भाव से मुक्त होता है और शरीर छोड़ता है, गिल्ट कॉन्शियसनेस से स्वयं को मुक्त करना है, क्योंकि इस अपराध भाव के साथ जिया नहीं जा सकता। या तो स्वयं को माफ कर लो, या माफी मांग लो, या माफ कर दो किसी और को। तो हम बात कर रहे थे गहरी इच्छा, डीप डिजायर, मुक्त होने की ये सभी भावनाओं से। उसके बाद है उड़ने के लिए चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, साहस, आत्मविश्वास कि मैं उड़ सकता हूं, मुझ में वो शक्ति है, मुझ में वो साहस है, मैं उड़ सकता हूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो फिर भी मैं उड़ूंगा। जब जब गिरा हूं तब तब फिर उठूंगा। कोशिश करते रहो, आज की ही मुरली में है शायद, माया पछाड़ेगी पर कोशिश करना नहीं रुकना है, कोशिश करते जाओ, गिरे फिर उठो, गिरे फिर उठो। सीखो अपनी हार से, क्योंकि ये निरंतर संघर्ष है, दिवस रात्र महा युद्धा सा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन, ये तो युद्ध चालू ही रहेगा पर हारना नहीं है इस युद्ध से। तो साहस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, उसके बाद में छठवीं बात जो चाहिए उड़ने के लिए वो है प्रैक्टिस, अभ्यास। क्या चाहिए? अभ्यास, रोज अभ्यास करते जाना है, शरीर से बाहर निकलने का, शरीर में फिर आने का, शरीर से बाहर निकलने का, शरीर में फिर आने का। मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, नहीं तो मनुष्य के मन में मृत्यु का भय रहता है हमेशा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हंसी की कहानी है भक्ति मार्ग की, काल्पनिक। जो इंद्र होता है एक बार बहुत नाराज हो जाता है सभी किसानों से, वो कहता है अब मैं बारिश नहीं गिराऊंगा, बारिश ही नहीं होती है 12 साल तक। तो किसान लोग बहुत कहते हैं प्लीज कुछ करो कुछ करो, हमारा खेत का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो वो इंद्र कहता है ठीक है, एक शर्त है, यदि शिव जी अपना डमरू बजाए तो हो सकेगी बारिश, नहीं तो बारिश नहीं होगी। और इंद्र सीक्रेट में शिव जी से मिलते हैं और कहते हैं डमरू मत बजाना, ये किसान तुम्हारे पास आएंगे परंतु डमरू मत बजाना। तो सभी किसान शिव जी के पास जाते, शिव जी कहते ना आई विल नॉट, मैं नहीं बजाऊंगा। तो सारे किसान दुखी होते हैं, सब लोग किसानी करना, खेती करना छोड़ देते, पर एक किसान होता है वो किसानी करते रहता है, हल जोतते रहता है, जमीन को जोतते रहता है, सब कुछ करते रहता है। सब बाकी किसान देखकर हैरान होते कि 12 साल तो बारिश होने वाली नहीं है, फिर भी 3 साल हो जाते हैं। सब लोग उसके पास जाते हैं, कहते तुम ये क्या कर रहे हो मूर्खता, क्यों तुम कर रहे हो ये सब मेहनत, बारिश तो होगी नहीं, फसल ही नहीं उगेगी। तो वो किसान कहता है मुझे पता है 12 साल बारिश नहीं होने वाली है, परंतु मुझे ये डर है कि 12 साल तक अगर मैं खेती नहीं करूंगा तो मैं तो भूल जाऊंगा ना खेती कैसे करना है प्रैक्टिस के लिए। और जैसे वो ये बात कहता है पार्वती सुन लेती है और भाग भाग के जाती है शंकर जी के पास और कहती है आपने सुना एक किसान है अभी भी खेती कर रहा है क्योंकि 12 साल बारिश नहीं होगी। तो वो कहती है आप भी 12 साल तक डमरू नहीं बजाने वाले हो, अगर आप भूल गए तो तुरंत अपने शंकर जी डमरू लेते और डमरू बजाना चालू और बारिश हो जाती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इस प्रकृति को सकाश देते रहना है रोज। इस शरीर से उड़कर जाना, प्रकृति का आह्वान करना, तत्वों का आह्वान करना, तत्वों से क्षमा मांगना कि हमने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। हे प्रकृति, धरती हमारी मां है, हमने क्या कर दिया, इस वायुमंडल को कैसे हमने दूषित कर दिया, डिफॉरेस्टेशन, जंगल तोड़। माफी मांगना पहले प्रकृति से, फिर उसकी मदद करना, उसे सकाश देना, पवित्रता की किरणें देना, और फिर उसका शोषण नहीं करना, उसे प्रदूषित नहीं करना, स्वच्छ रखना, यह हमारे कर्तव्य है। तो छठवीं बात जो चाहिए किसके लिए, उड़ने के लिए, वो क्या है, प्रैक्टिस, अभ्यास। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, अभ्यास करते जाना, अभ्यास करते जाना। रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान, कितना भी पत्थर हो उसमें निशान पड़ जाएगा। और लास्ट सातवीं बात, उड़ने के लिए द डिवाइन कॉल, आवाज आ जाए ऊपर से, आ जाओ। ये शायद सबको नहीं होगा, किसी किसी को हो गया। जिनको आवाज आ जाए ऊपर से, अब वो रुक नहीं सकते, क्योंकि आवाज इतनी गहरी है, आवाज अव्यक्त है, वो आवाज कह रही है उठ आ जा, उठ आ जा, कम ऑन, क्लैप्स माय हैंड एंड कम। फिर रुक नहीं पाती आत्मा, इस संसार में रुक नहीं पाती है, क्योंकि आवाज इतनी ऊंची है, इतनी गहरी है। जैसे ब्रह्मा बाबा को आवाज आ गई, वैसी आवाज द डिवाइन कॉल। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है चुरुंगन, जिसमें एक छोटा सा पक्षी है, अभी अभी घोंसले से बाहर आते पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया। माँ कहती है, अभी नहीं उड़ना आया तुमको, रुको। थोड़ी देर में वो पक्षी एक डाली से दूसरी डाली पे कूदता है, फिर से पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया। नहीं चुरुंगन, तू भरमाया। थोड़ी देर के बाद वो पंछी ऊपर से नीचे तक जाता है, फिर पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया। नहीं चुरुंगन, तू भरमाया। फिर एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर जाता है, फिर पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया। माँ कहती है, नहीं चुरुंगन, तू भरमाया। और लास्ट में दिखाया है नीले गगन की अव्यक्त पुकार, उसे पुकारती है नीले गगन की अनिवार पुकार। तब माँ कहती है कि आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया, आज तू उड़ सकता है, क्योंकि अब तुझे आवाज आ गई है ऊंचाई की। ऊंचाई से आवाज आई है, एक ऐसी आवाज आई है कि अब नहीं रुक सकते। और जब वो आवाज आ जाती है, तब आत्मा उड़ती है, द कॉल डिवाइन। पर उसके लिए अपने आप को तैयार भी करना है, सारे विकारों से मुक्त भी करना है, ताकि वो एक दिन वो कॉल आ जाए। क्योंकि वो आने के बाद, वो आवाज आने के बाद, जितने बंधन हैं सब एक क्षण में व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध, कोई कहते हैं 6 साल, कोई कहते हैं 10 साल तपस्या करते रहे, अलग अलग प्रकार की तपस्या करते, कुछ नहीं मिला, शरीर को सुखा दिया, लास्ट में मरने को थे, तब किसी ने खीर पिलाई और उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रात भर इस संकल्प के साथ कि जब तक सत्य का जान ना लू नहीं रुकूंगा। और उसी रात सत्य उनको मिल गया, जैसे ऊपर से कोई आवाज आ गई। तो ऐसी ये 7 बातें हैं। पहला पंख, ज्ञान और योग। दूसरा पिंजड़ा नहीं, पिंजड़े से स्वयं को मुक्त करना है। तीसरा कोई बेड़िया नहीं। चौथा गहरी इच्छा, डीप डिजायर। पांचवा आत्मविश्वास या साहस, अगला प्रैक्टिस, और लास्ट द लास्ट कॉल, द डिवाइन कॉल। तो इच्छा करनी है, मुझे इन बंधनों से मुक्त करना है, होना है। मुझे एक वाक्य अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे, लास्ट, मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं, मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। जब ऐसी स्थिति होगी तब आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी एक मिनट के लिए योगयुक्त होकर बैठेंगे, संकल्प करेंगे, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं, मैं उड़ता पंछी हूं, स्वयं भी उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है।